नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने अपनी प्यारी तोतो चांद की नई किस्से, नई कहानियाँ, नई बातें लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। ये किस्सा है जब तोतो चांद पहली बार किसी मेले में जाती है। उसके पहले वाले स्कूल जहाँ से वो निकाली गई थी, उसके पास ही सेंजुक ताल के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था। द्वीप में सौंदर्य और संगीत की देवी बेंटन का मंदिर था। वहाँ लगने वाले वार्षिक मेले की रात वह भी अपनी मम्मी पापा के साथ जाती है। मेले के पास पहुँचते ही अचानक से अंधेरी रात जो होती है, क्योंकि वो शाम को जाती है, वहाँ जाते ही उसे बिल्कुल चकाचौंध रोशनी से जगमगाता हुआ वो मेला नज़र आता है। वो हर दुकान में झांक झांक कर देख रही होती है। हर तरफ आवाज़, खड़खड़, चरचर, खुशबू, कहीं कुछ कहीं कुछ। हम सब भी मेले में ज़रूर गए हैं किसी न किसी, और उम्मीद है आप भी गए होंगे किसी न किसी मेले में। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा हर साल मुझे मेले में ले जाते थे, जो कि हमेशा नागपंचमी के दिन, सावन के जो नागपंचमी होता है उसमें लगता था। उसमें अजीबो गरीब हर तरीके की लुभावनी चीज़ें, बच्चों की खिलौने, और उस ज़माने में प्लास्टिक कम था तो प्लास्टिक के खिलौने तो नहीं थे, लकड़ी के खिलौने बहुत मिला करते थे। लकड़ी का डाइनिंग सेट, लकड़ी के किचन सेट्स, और छोटी छोटी गुड्डे गुड़िया, हाथी घोड़े, बहुत कुछ। और खाने पीने को भी बहुत होता था, झूले भी बहुत होते थे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब भी कभी ना कभी मेले में गए होंगे, जैसे हमारी तोतो चांद गई थी। तोतो चांद ने वहाँ एक ऐसा खिलौना देखा जो हुक्का था, जिसको गुड़गुड़ करने पर पेपरमिंट का धुआं गले में आ जाता था। हुक्के पर कुछ जानवरों के चित्र बने हुए थे, लॉलीपॉप और बुढ़िया के बाल, जिसे हम कैंडी कहते हैं, पिंक कलर का होता है, वो भी उसको दिखा। बांस की बंदूकें थी जिनसे खास तरीके की लकड़ी की कपच्चियों को जोड़ने पर धाई की आवाज़ होती थी। सड़क के पास ही खड़ा एक आदमी तलवारें और कांच के टुकड़े भी निगल रहा था। एक दूसरा आदमी एक पाउडर बेच रहा था। किसी कटोरे के किनारे पर उसे मलने के बाद उससे आवाज़ें निकाली जा सकती थी। जादुई अंगूठियाँ भी देखी उसने, बहुत कुछ देखा उसने इस मेले में। अदृश्य चित्र थे जो सूरज के प्रकाश में उभर आते थे। कागज की कलियां थी जो पानी में डालने पर खिलने लगती। तोतो चांद चलती ही जा रही थी। अचानक उसकी नज़र एक ऐसी दुकान पर पड़ी, एक ऐसे व्यक्ति पर जो छोटी सी टोकरी में बहुत सारे चूजों को रखकर बेच रहा था। उसने चूजों को देखते ही कहा, मुझे भी एक चूज़ा चाहिए। उसने मम्मी पापा को अपनी ओर खींचते हुए कहा, मुझे भी एक ले दो ना। उस बेचारी ने इतनी मन्नतें करी अपने मम्मी पापा से, वो बिल्कुल ज़िद पर अड़ गई, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। पर मम्मी पापा बहुत समझा रहे थे उसे कि देखो ये छोटे हैं, बहुत नाजुक हैं, ये जल्दी ही मर जाएंगे, फिर तुम और रोगी। वो नहीं मानी। वो मनाते रहे, समझाते रहे कि अभी ये बड़े जैसे थोड़े से होंगे, 3-4 दिन के बाद ये मर जाएंगे, मत ले जाओ, तुमको बहुत दुख होगा, प्लीज़ मान जाओ। वो नहीं मानी, रोती दौड़े मारती बिल्कुल चली गई। रास्ते में पहुंची तो और जब सन्नाटा हुआ रोड पर, तो उसकी आवाज़ गूंज रही थी हर तरफ, और वो रो रही थी, मैंने पहली बार ज़िद करी आपसे कुछ लेने के लिए और आपने मुझे कब ले के नहीं दिया, फिर मुझे मेले में ही क्यों लाए थे आप? आपने क्यों कहा था कि तुम जो चाहे वो ले सकती हो? अब मैं लेना चाहती हूँ तो आप मुझे लेने नहीं देते हो। वो जिद पे अड़ गई। उसकी मम्मी पापा फिर भी उसको समझाते रहे कि देखो ये ज़्यादा समय जिंदा नहीं रह सकेंगे, और जब वे मर जाएंगे तो तुम और ज़्यादा रोगी। पर तोतो चांद का मन तो चूज़ों पर ही अटक गया था। तोतो चांद नहीं मानी, हार कर उसके मम्मी पापा को वो चूज़े लेने ही पड़े। उसने दो चूज़े पीले कलर के लिए और एक डिब्बे में लेकर घर की ओर बढ़ चली। क्योंकि मौसम ठंडा था तो माँ ने दूसरे दिन ही एक बढ़ई से कारपेंटर से एक लकड़ी का डिब्बा बनवाया जिसमें लाल कलर का छोटा सा एक लट्टू जैसा कुछ बल्ब जल रहा था जिससे कि वो चूज़ों को गर्मी पहुँचाता रहे। बरसात के बाद जैसे सूरज चमक उठा है वैसे ही तोतो चांद के चेहरे पे भी मुस्कान आ चुकी थी। बहुत खुशी खुशी वो घर ले गई उन चूज़ों को, कुछ काटती, प्यार करती, उनसे बतियाती, उसका दिन ऐसे ही निकलता, उन्हें निहारती रहती। फिर कुछ ऐसा हुआ कि तोतो चांद दिन भर उन्हें निहारती रही। फिर पीले चूज़े बेहद प्यारे थे, पर चौथे दिन एक ने चलना फिरना बंद कर दिया और पांचवे दिन दूसरे ने भी। वह उन्हें पुचकारती रही, उनसे बतियाती रही, पर चूज़े बिल्कुल भी नहीं हिले डुले और ना ही उनकी आँख खुली। जैसा माँ और पिताजी ने कहा था वैसा ही हुआ। अब वो क्या करे, मन ही मन बहुत रोई, बहुत दुख हुआ उसे, बहुत ठेस पहुँची। पहली बार उसने किसी चीज़ की ज़िद की, पहली बार उसने उसको लिया और पहला अनुभव था उसका किसी चीज़ से इतना जुड़ने का जिसे उसने खुद पसंद किया था, और वो भी चार पांच दिनों में उसे दूर भी चला। अब वो निशब्द रही और उसने बागीचे में एक गड्ढा खोदा और उन दोनों को वहीं गाड़ दिया, उस पर कुछ फूल रखे। अब जो वो डिब्बा था जिसमें वो उसको लेकर आई थी उसमें एक पीला पंख दिखा जिसे देखकर वो इतना रोई, इतना रोई, उसे वो मेले वाली रात याद आ गई जब वो चूज़े चू चू करते हुए उसकी ओर देख रहे थे और वो उनको अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी थी। ये पहला अनुभव था उसका जब वो कुछ खोने और जुदाई का ये अनुभव, ये दर्द उसने सहा था। उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही नया था, तकलीफ भी नहीं थी उसके लिए, और शायद इसी का नाम जिंदगी है, मिलना और बिछड़ जाना। तोतो चांद को भी इन चूज़ों ने यही सिखाया। अब हमारी तोतो चांद के किस्से में एक नया किस्सा, सबसे खराब कपड़े जिसका नाम है। हेडमास्टर जी बच्चों के माता पिता से बराबर यह कहते रहते थे कि वो बच्चों को स्कूल में सबसे खराब कपड़ा पहना कर भेजा करें। ऐसा वे इसलिए कहते ताकि बच्चे खेलते समय कपड़ों को कीचड़ में सान डालें और फाड़ बैठे तो किसी को कोई तकलीफ ना हो। उन्हें लगता था कि बच्चों को कपड़े गंदे करने या फाड़ने के लिए डांटना या डांट के डर से बच्चों का खेलों में हिस्सा ना लेना एक शर्मनाक बात है। तो मोई के पास ही दूसरी प्राथमिक शालाएं भी थी। वहाँ बच्चियाँ नौसेना की पोशाक जैसी यूनिफॉर्म पहनती और लड़के ऊंची कॉलर के जैकेट और निकट पहनते। तो मोई के बच्चे अपने साधारण कपड़े पहनते और उनके शिक्षक उनके कपड़ों की चिंता किए बिना उन्हें जी भर के खेलने देते। हम लोग शायद ऐसा ही करते हैं, अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं कि तुमने कपड़े गंदे कर लिए, काले कर लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है कि बच्चों को कभी भी कपड़ों की वजह से उनका खेलना, उनका मचलना और ये जो बालपन है ये उनके आगे नहीं आना चाहिए, उनके आड़े नहीं आना चाहिए, उन्हें जी भर के खेलने देना चाहिए। तो मोए के बच्चे अपने साधारण कपड़े पहनते और उनके शिक्षक उन्हीं उनके कपड़ों की चिंता किए बिना उन्हें जी भर के खेलने देते। उन दिनों जीन्स की पैंट तो बनती नहीं थी तो सभी लड़कों की पैंटों पर थेंगलियाँ सिली होती थी। लड़कियों की स्कर्ट भी सबसे टिकाऊ कपड़े की बनी होती थी। तोतो चांद का मनपसंद खेल था लोगों के बागीचों तथा खाली जगहों की बाड़ों के नीचे से सरकना, उसके उनके खेतों में जाती थी या बागों में। इसलिए उसके लिए तो कपड़ों की चिंता ना करना ही सुख की बात थी। उन दिनों बड़े काटीले तारों की बनी होती थी जो बाड़ लगी होती थी, कईयों में तो कटीले तार बिल्कुल जमीन तक लगे होते थे। उनके नीचे से निकलने के लिए बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह जमीन खोदनी पड़ती थी। सावधानी बरतने के बाद तोतो चान अपने कपड़ों को कटीले तारों में उलझा कर फाड़ी डालती थी। फिर भी एक बार तो उसकी मलमल की एक फ्रॉक ऊपर से नीचे तक तार तार हो गई। फ्रॉक थी तो पुरानी, पर उसे पता था कि माँ को वह बेहद पसंद है। तोतो चान बार बार सोचती रही कि माँ से आखिर क्या कहें। यह बताने की उसकी बिल्कुल इच्छा ना थी, ना हिम्मत थी कि फ्रॉक असल में कटीले तारों में उलझ कर फटी है। उसने सोचा कि कोई झूठ बोलना ही बेहतर होगा, ताकि माँ को लगे कि फ्रॉक के फटने में उसका कोई हाथ नहीं है और वो बच जाएगी। तो तब माँ को कुछ ऐसी कहानी उसने सुनाई। जब मैं सड़क पर जा रही थी, उसने माँ से कहा, जब मैं सड़क पर जा रही थी, उसने घर पहुँच कर अचानक देखा कि बहुत से बच्चों ने उसको उस पर छुरे फेंक दिए, मतलब उस पर चाकू फेंकने लगे। मैं उन्हें पहचानती तक नहीं थी, इसलिए यह फ्रॉक ऐसे फट गई। मतलब उसका कहना था कि जो कुछ बच्चे थे जिन्हें वो नहीं जानती थी, उन बच्चों ने चाकू लाकर उसके फ्रॉक को काट दिया। छोटा सा दिमाग, छोटी सी बच्ची, ये भी नहीं सोच पाई कि माँ इसको सच मानेगी कि नहीं मानेगी। पर उसने अपनी आँख को बचाने के लिए अपना दिमाग चलाया और एक कहानी तैयार कर ली। उसे लगा माँ या ज़रूर समझ जाएगी कि ऐसी परिस्थिति में पढ़कर अगर तोतो चांद से माँ की पसंदीदा फ्रॉक फट जाती है तो उसमें उस बेचारे का क्या दोष है, क्योंकि दोष तो बच्चों उन बच्चों का है जिन्होंने चाकू से उसका फ्रॉक फाड़ दिया। पर जाहिर है कि माँ ने छुरे वाली कहानी पर कतई विश्वास नहीं किया था। पीठ पर फेंके गए छुरों से आखिर चोटें भी तो लग सकती हैं, पर तो सिर्फ फ्रॉक ही कैसे फट सकती है भाई। और फिर तोतो चांद घटना से डरी भी ना थी। माँ को विश्वास था कि उसने यह कहानी जरूर बनाई है खुद से अपने आप को बचाने के लिए। पर तोतो चांद के लिए ऐसी झूठी कहानी करना कोई नई बात नहीं थी। माँ यह समझ गई कि फ्रॉक के पटने का तोतो चांद को बेहद अफसोस है। उनको यह समझ आ गया कि उसने जो कहानी बनाई है ऐसे ही नहीं बनाई है। ज़रूर वो यही चाहती होगी कि या तो मुझे कोई ठेस ना पहुँचे या फिर वो मुझसे डरती होगी। पर तोतो चांद के चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो माँ से डरती है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको उस फ्रॉक के फटने का बहुत अफसोस था, और क्योंकि वो फ्रॉक माँ को पसंद थी इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि माँ को सच्चाई बताकर चोट पहुँचाई जाए कि ये फ्रॉक कैसे फटी है। पर जाहिर है कि माँ ने छुरों वाली कहानी पर तो कोई विश्वास किया ही नहीं, तो ऐसी झूठी कहानी कहना उसके लिए कोई नई बात तो थी नहीं। तभी उसने उसे कहानी बनानी पड़ी। पर माँ एक बात काफ़ी समय से जानना चाह रही थी और उसे लगा कि यह सही मौका है। या तो मैं समझ गई, माँ ने तोतो चांद से कहा, या तो मैं समझ गई कि तुम्हारी फ्रॉकें छुरों वगैरह से फट जाती है, पर तुम्हारी जो पैंट्स हैं ये कैसे फट जाती हैं। माँ यह समझ ही नहीं पाती थी कि लेस से सजी सजाई जो उसकी पैंट्स होती हैं वो रोज़ रोज़ कैसे फट जाती हैं, उसे इतना गंदा कैसे होने दिया जाता है, वो स्लाइड से स्कूल में फिसल पट्टी से फिसलती है तो घिस जाते होंगे कपड़े, ये तो समझ आता है, पर फटना नहीं समझ आता था उनको। तो चांद ने कुछ देर विचारा, सोचा, फिर कहा, देखो जब कोई बाड़ कटीले तारों की बनी हो और उसके नीचे खुदाई करके उसे पार करना हो, तो घुसते समय फ्रॉक या स्कर्ट, बाहर निकलते समय कपड़े सब फट जाते हैं पैंट, और फिर हर बार घुसते समय क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, और लौटते समय अच्छा तो अब विदा भी तो कहना पड़ता है। माँ बात को ठीक ठीक समझ नहीं पाई, पर उसे मज़ा आ रहा था उसकी बातें सुनने में। जब वो अपनी माँ को ये कहानियाँ बता रही थी कि वो स्कूल में क्या करते हैं ये सब, माँ ने पूछा, क्या ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता है तुम्हें, तुम करके तो देखो माँ कितना मज़ा आता है। तोतो चांद ने अपनी माँ से कहा, बड़ा मज़ा आएगा और तब तुम्हारे भी कपड़े फट जाएंगे। यह खेल तो तोतो चांद ने इजाद किया था और जिसमें उसे इतना आनंद आता था कि पूछिए मत। सबसे पहले ज़मीन की एक ऐसी जगह जिसकी बाढ़ का टीलों से बनी है उसे ढूंढनी पड़ती है। मतलब वो अपनी माँ को बता रही थी कि ऐसी जगह पर हमें जाना होगा जहाँ पर जो बाग है, जो खेत है, वो कटीले तारों से घिरे हुए हों। मिट्टी में एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब पेट के बल रेंग कर उसको पार करके पहुँचना होता है। अंदर पहुँचने के बाद पिछले गड्ढे के ही पास एक दूसरा गड्ढा खोदकर अच्छा तो अलविदा कहना होता है, तब रेंग कर वापस लौट आया जा सकता है। तो चांद की माँ को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था कि बाहर निकलते समय उसकी जो पैंट्स हैं वो तारों में उलझकर फट जाती और फिर यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी। हर बार माफ़ करना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ कहकर गड्ढा खोदना और बाहर निकलते समय अच्छा तो अलविदा कहकर वापस रेंगना। उसकी फ्रॉक, उसकी पैंट तो फटती ही होगी। तो चांद बड़ी तन्मयता से तारों के एक छोर से दूसरे छोर तक रेंगती रेंगती आती जाती रहती और उसकी पैंट्स भी फटी जाती थी। ऐसे किसी खेल की कल्पना करना जो बड़ों को थका भी दे और उबाऊ भी लगे, बच्चों के लिए बड़े ही मज़े की बात हो सकती है। तो चांद के गंदे हाथों, मिट्टी से भरे नाखूनों और कानों को देखकर माँ को कुछ ईर्ष्या होती थी। उसको ये लगता था कि ऐसा बचपन उन्होंने क्यों नहीं जिया। हेडमास्टर जी के लिए मन में बहुत ही आदर सम्मान आता था तब। आखिर उन्होंने ही तो सुझाया था कि बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जिन्हें वे जी भर कर गंदा कर सकें। या इस बात का एक और प्रमाण था कि वे बच्चों को बखूबी समझते थे। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, कि बच्चों का ये जो बचपना है ये लौट कर नहीं आएगा कभी दोबारा, और हम उन्हें अच्छे कपड़ों, दिखावटी, इन सब में उलझा कर उन्हें इन चीज़ों से वंचित रखते हैं। हम अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए उनके बचपने को उनसे छीन लेते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि भाई मेहनत लगती है कपड़े धोने में, साफ करने में, और तुम हो कि आए दिन गंदा करके चले आते हो। आज जब मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ तो चांद की ये बात समझ रही हूँ, तो मुझे अपने बच्चे मेरी आंखों के सामने नज़र आते हैं और मुझे भी एहसास होता है कि वो भी यही सब खेलना चाहते हैं। वास्तविकता में मिट्टी में जाना, रौंदना, सनना, उसे सानना, उसे खेलना। और एक समय था जब हम ऐसी जगह पर थी जहाँ पर हमें किचन गार्डन मिला था, और तब हमारे बच्चे वहाँ जाते थे और मिट्टी में खूब खेलते थे, गड्ढा खोदते थे, फावड़ा चलाते थे। और जब वो बगीचे में पानी डालते और किसी गड्ढे में पानी भर जाता क्यारी में, तो उसी क्यारी में लोट लोट कर नहाते थे। उनको बड़ा मज़ा आता था, पर हमने भी कभी रोका नहीं और उन्हें ऐसा करने दिया। आज उनके मन में ये तो नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए था। उन्होंने जिया है उस पल को और इन्जॉय किया है उस टाइम को, तो उसकी यादें मन को एक खुशी से भर देती हैं, चेहरे पे मुस्कान लाती हैं कि हम ऐसा करते थे। और वे ये कह सकते हैं दूसरों से कि मैंने ऐसा किया है, क्या तुमने कभी अपना बचपन ऐसा जिया है? बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल सामान्य नेचुरल। आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ कि सोसाइटीज़ और अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहाँ उन्हें मिट्टी भी नसीब होती है। अगर हमारे बच्चों को ऐसा माहौल मिलता है और ऐसा जीवन जीने को मिलता है जो बिल्कुल ही प्योर प्राकृतिक हो, चिड़ियों की चहचहाट में हो, जहाँ उन्हें दाना डालना पसंद हो, पेड़ से लटके झूलों से झूलना पसंद हो, और ये चीज़ें मिलती हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और मैं अपने बच्चों को भी बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि उन्हें ऐसा माहौल मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको ये कहानी तो चांद के किस्से ज़रूर पसंद आए होंगे। अगली कहानी के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।